हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹہری رہتی ہے، لیکن کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ احکام نماز کا ہم سلسلہ شروع کریں، ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے، خراسان جس کا دارالخلافہ دارالحکومت نیشابور ہے، اس دور کے اندر ایک لوہار شہر حراس سے نیشابور کی طرف آیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں رہ کر چند دن کاروبار کروں گا اور پھر کچھ مال اکٹھا ہو جائے گا تو میں پھر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ آؤں گا۔ وہ نیشابور آ کر اپنا کاروبار کرتا رہا، پھر ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر کے پھر واپس آ جاؤں گا، اس ارادے سے واپس لوٹا۔ اور اس نے یہ جو واپسی کا سفر ہے، یہ رات کے پچھلے پہر شروع کیا۔ انہی دنوں کے اندر عبداللہ طاہر کی طرف سے سپاہیوں کو یہ آرڈر تھا کہ وہ شہر کے جو تمام راستے ہیں انہیں محفوظ بنائیں تاکہ لوگ چوروں سے ڈکیتوں سے محفوظ ہو سکیں اور مسافروں کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس رات سپاہیوں نے چند چوروں کو گرفتار کر لیا۔ امیر خراسان یعنی عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی گئی، لیکن اچانک ایسا ہوا ان میں سے جو ایک چور تھا وہ بھاگ گیا، اسے موقع مل گیا۔ اب یہ لوگ جو گرفتار کرنے والے سپاہی تھے، یہ گھبرا گئے کہ امیر محترم کو پتا چل چکا ہے کہ اتنے افراد ہیں، ان میں سے ایک شخص کم ہو گیا ہے۔ اب اگر ان کو پتا چل گیا کہ وہ شخص بھاگ گیا ہماری غفلت کی وجہ سے، تو پھر ہمیں سزا ملے گی۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ سفر کرتا ہوا وہی لوہار جو اپنے شہر کی طرف واپس جا رہا تھا، وہ انہیں نظر آ گیا۔ ان سپاہیوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش اور تحقیق کے بغیر ہی سب کو قید کر دیا گیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب رب ہی اس معاملے کو حل فرما سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے مجھے حاصل ہو جائے گا۔ لہذا پھر کیا ہوا کہ اس نے وضو کیا और जो कैद खाना जिसमें ये बंद था उसके एक गोशे में जाकर इसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और फिर हर दो रकात के बाद सर सजदे में रख कर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रिक्कत अंगेज दुआएं और दिल सोज मुनाजात शुरू कर देता और ये दुआ करता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं बेकसूर हूं। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब में देखा कि चार अफराद हैं जो बहुत बहादुर हैं, ताकतवर लोग हैं, सख्ती के साथ उसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उलटने लगते हैं। इतने में इसकी नींद टूट गई, यानी ये बेदार हो गए। इन्होंने बेदार होकर चूंकि एक बुरा ख्वाब देखा था कि इसके तख्त को उलट दिया जाने लगा था, इन्होंने फौरन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वुजू किया और उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में दो रकत नमाज अदा की कि जिसकी तरफ हर शाहो गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते हैं। उसके बाद दोबारा सोया, फिर वही ख्वाब आया। ये ख्वाब अब्दुल्ला ताहिर को उस रात चार मर्तबा आता है। हर बार वो यही देखता है कि चार नौजवान हैं जो ताकतवर हैं, मजबूत हैं, इसके तख्त के चारों पायों से पकड़कर उलटने लगते हैं तो आंख खुल जाती है। अमीर खरासा अब्दुल्ला ताहिर इस वाकया से घबरा गए और उन्हें यकीन हो गया कि इसमें जरूर किसी मजलूम की आह का असर लगता है। अमीर खरासा ने रात ही में जेलर को बुलवा लिया, उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं हो गया? जेलर ने कहा, आलीजा, ये बात तो मैं नहीं जानता कि मजलूम कौन है और कौन नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर मुझे इल्म है कि एक शख्स को मैं देख रहा हूं कि जो जेल में है और एक गोशे में जाकर वुजू करने के बाद नमाज में मसरूफ हो गया है और रिक्कत अंगेज दुआएं कर रहा है, दिल सोज दुआएं वो कर रहा है, बस उसे मैं देख रहा हूं। अमीर खरासा ने हुक्म दिया उसे फौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने उसके मामले की तहकीक की, मालूम हुआ कि ये शख्स बेकसूर है। उसने उस शख्स से माजरत की और कहा, आप मेरे साथ तीन काम कीजिए। नंबर एक, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि 1000 दिरहम में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, आप उसे कबूल कर दें। और तीसरी बात, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ ले आए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। उस नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको माफ कर दूं तो मैं अल्लाह की रजा के लिए आपको माफ करता हूं, और जो आपने ये फरमाया कि मैं 1000 दिरहम आपसे कबूल कर लूं तो ठीक है, मैं वो भी कबूल कर लेता हूं, लेकिन जो तीसरी बात आपने ये फरमाई कि जब भी मुझे किसी भी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आ जाऊं, आप मेरी उस मुश्किल को हल कर देंगे, तो ये मुझसे नहीं हो सकेगा। अमीर खरासा ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो उस शख्स ने जो जवाब दिया, प्यारे इस्लामी भाइयों, वो सुनने वाला जवाब है ताकि हम उससे सबक हासिल कर सकें। उस शख्स ने कहा कि वो खालिक व मालिक जल्ला जलालुहु जो मुझ जैसे फकीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में चार मर्तबा औंधा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी जरूरत किसी दूसरे के पास ले जाना उसूल बंदगी के खिलाफ है। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा कि मेरा कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने और अल्लाह करीम का जिक्र करने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं उसे गैर के पास ले जाऊं, यानी जब मेरा सारा काम अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करने और नमाज पढ़ने से पूरा हो जाता है और मेरे जितने भी मसाइब व आलाम और परेशानियां होती हैं वो रब तबारक व ताला खुद दूर फरमा देता है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी और से जाकर अपनी मुश्किलें उसके सामने रख दूं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देखिए कि नमाज की बरकत से और अल्लाह के जिक्र की बरकत से बंदे के जितने भी मामलात होते हैं वो अल्लाह तबारक व ताला हल फरमा देता है। तो अल्लाह का जिक्र करते रहिए और जिक्र करने वाली जुबान अल्लाह तबारक व ताला से मांगते रहिए। और जो नमाजें पंजगाना जो अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर फर्ज की हैं कि नमाजें 5 हैं और सवाब 50 का मिल जाता है, ये अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी रहमत है जो हम पर है कि हम पढ़ते 5 हैं सवाब 50 का ले लेते हैं और अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से हमारी परेशानियां दूर फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पाबंदी वक्त के साथ अदा करें, कोई भी नमाज हमारी कजा नहीं होनी चाहिए। तो नाजरीन आज से ये इरादा कर लीजिए कि हम नमाज पढ़ेंगे, कोई भी मुश्किल मामला जब दरपेश हो जाए तो फिर हम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में नमाज पढ़कर उससे मदद मांगेंगे। और हुक्म भी यही है, वस्ताइनू बिस्सबरी वस्सला, अल्लाह तबारक व ताला से मदद चाहे। किन चीजों के जरिए? कहा सबर के जरिए से और नमाज के जरिए से। कोई भी मुश्किल मामला दरपेश होता तो हम सब के प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम नमाज की तरफ तवज्जो फरमाया करते थे, नमाज में मशगूल हो जाया करते थे। और मुश्किल से मुश्किल ही मामला क्यों ना हो अल्लाह तबारक व ताला हल फरमा देता था। मदनी चैनल के नाज़रीन आइए आज के सिलसिले में चंद एक अहकाम नमाज भी शामिल करते हैं। जो पहला मसला आज के सिलसिले में हम शामिल करने जा रहे हैं वो समाअत फरमाइए। फुकहा किराम ये फरमाते हैं कि सजदा वगैरह में किबला से उंगलियों को फेर देना ये मकरूह है। अब सवाल ये है कि सजदा में कितनी उंगलियों का जमीन पर लगना फर्ज है और कितनी का वाजिब है? अगर इमाम या कोई भी मुक्तदी हो या अलग से नमाज पढ़ने वाला हो, कोई भी नमाजी हो, सिर्फ उंगलियों के सिरे अगर जमीन पर लगाए तो नमाज का क्या हुक्म होगा? इस हवाले से हुक्म शरा यह है कि इमाम हो या आम नमाजी हो, सजदा में दोनों पांव की 10 उंगलियों में से एक का पेट जमीन पर लगना यह फर्ज है। और हर पांव की यानी दोनों पांव में 5-5 उंगलियां तो ये टोटल 10 उंगलियां हो गई, और हर पांव की 3-3 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना ये वाजिब है। पेट से मतलब उंगलियां मुड़कर यूं लग जाएं। और दोनों पांव की 10 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना और उनका किबला रूह होना यह सुन्नत है। और अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पांव जमीन से उठे रहे, जमीन पर लगे ही नहीं, या पांव का जो जाहरी हिस्सा था वो जमीन पर लगाया, या सिर्फ उंगलियों की नोके जो है ये सिरे जो है ये जमीन पर लगाए और एक भी उंगली का पेट जमीन पर ना लगा तो नमाज नहीं होगी। इस नमाज को दोबारा दुरुस्त तरीके के साथ पढ़ना ये बंदे के ऊपर फर्ज होगा। इसी तरह अगर एक उंगली का पेट तो जमीन पर लगाया मगर दोनों पांव की 3-3 उंगलियों का पेट जमीन पर न लगाया तो तर्के वाजिब की वजह से गुना भी होगा और नमाज वाजिबुल एयादा होगी। यानी नफ्से नमाज तो हो गई लेकिन इसमें कमी है जिसकी वजह से गुना भी हुआ और इस नमाज को दोहराना ये बंदे के ऊपर वाजिब है कि इसे दोबारा अदा करे। और मजीद ये भी, चूंकि इमाम का जिक्र आया और आम नमाजियों का जिक्र आया, इस हवाले से भी डिटेल समाप्त कर लें। इमाम चूंकि मुक्तदियों की नमाज का जामिन होता है तो जिस सूरत में इमाम की नमाज नहीं होगी, यानी ये उंगलियों की जो सूरतें बयान की गई जमीन पर लगाने के हवाले से, तो जिस सूरत के अंदर इमाम की नमाज नहीं होगी और इयादा फर्ज होगा, उस सूरत में जो पीछे मुक्तदी हैं अगरचे वो अपनी उंगलियां पूरी लगा रहे थे लेकिन फिर भी इमाम की नमाज ना होने की वजह से मुक्तदियों की नमाज भी नहीं होगी और उनको भी इमाम के साथ दोबारा पढ़ना ये फर्ज होगा। और यूं ही जिस सूरत के अंदर इमाम की नमाज वाजिबुल एयादा होगी, यानी नफ्से नमाज तो हो गई, फर्ज साकित हो गया लेकिन कभी इसके अंदर मौजूद है क्योंकि वाजिब का तर्क किया, तो जिस सूरत के अंदर इमाम की नमाज वाजिबुल एआदा होगी, मुक्तदियों की नमाज भी उस सूरत के अंदर वाजिबुल एआदा होगी। इस मसले को बार बार सुनिए, जहन नशीन कर लीजिए, ताकि हम अपनी नमाजों को कमा हक हु अदा करने में कामयाब हो सकें। अब यहां पर एक सवाल और करते हैं, वो ये है कि ये हुक्म जो बयान किया गया है, क्या ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए है? कि पांव की दसों उंगलियों का पेट मुड़कर लगना ये सुन्नत है, और दोनों पांव की अक्सर यानी तीन तीन उंगलियों का पेट मुड़कर लग जाना ये वाजिब है, और कम से कम एक उंगली का पेट जमीन पर लगना ये फर्ज है, तो क्या ये जो हुक्म शरा बयान किया गया है ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए है? तो इसका जवाब ये है कि ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है। इस हवाले से औरतों के लिए हुक्म शरा ये है कि सजदा में औरत के लिए वो तरीका अपनाना ज्यादा बेहतर है जिसमें उसका सितर ज्यादा हो। इसलिए सजदे में औरत को हुक्म यह है कि वो पस्त होकर सजदा करे, अपने पेट को रानों से मिला दे, रानों को पिंडलियों से मिला दे, और पिंडलियों को जमीन के साथ लगा दे, कलाइयां जमीन पर बिछा दे। इसीलिए पांव की उंगलियों के पेट जमीन पर ना लगाए कि इस तरह सुरीन ऊपर होगी जो सितर के मुनाफी है। तो ये जो हुक्म शरा बयान किया गया था ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है, और औरतों के लिए हुक्म ये है कि वो ऐसा तरीका अपनाए कि जिसमें सितर ज्यादा है, और इसके लिए उलमा ने फरमाया कि वो पस्त होकर सजदा करेगी। मजीद आइए आगे एक और मसला शामिल करते हैं, नवाफिल किन औकात में पढ़ना ये मकरूह ममनू है। उलमा फरमाते हैं कि 12 औकात ऐसे हैं जिनमें नफिल नमाज पढ़ना ये मकरूह है। इसकी तफसील सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में दर्ज फरमाई। अब फरमाते हैं कि 12 वक्तों में नवाफिल पढ़ना ये मना है। उनमें से पहला वक्त यह है कि सुबह सादिक से सूरज निकलने तक कोई नफिल नमाज जायज नहीं है, सिवाय फजर की 2 रकात सुन्नत के। यानी जब सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 सुन्नत फजर पढ़ने की इजाजत है। सुन्नत का ताल्लुक भी चूंकि नफिल से है, इसलिए सुन्नत फजर के अलावा कोई और यहां पढ़ना यह मकरूह ममनू है, जायज नहीं। और दूसरी बात, अपने मजहब की जमात के लिए इकामत हुई तो इकामत से खत्मे जमात तक नफिल और सुन्नत पढ़ना यह मकरूह तहरीमे है। अलबत्ता अगर नमाज फजर की जमात कायम हो चुकी है और आने वाला अब आया और यह देखता है कि अगर सुन्नत फजर पढ़ लूंगा तो तब भी मुझे जमात मिल जाएगी, अगरचे कादा अखीरा ही मुझे मिलेगा, तो ऐसी सूरत के अंदर हुक्म शरा यह है कि जमात से अलग दूर होकर फजर की 2 सुन्नतें पढ़ ले, फिर उसके बाद जमात में शरीक हो जाए। और अगर यह जानता हो कि अगर मैं सुन्नत फजर पढ़ने के लिए अलग हुआ तो इस दौरान जमात निकल जाएगी, तो फरमाया ऐसी सूरत के अंदर यह जमात में शामिल हो जाए और सुन्नत फजर तर्क कर दे, फिर जब सूरज निकल आए तो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद ये 2 सुन्नत फजर अदा की जा सकती हैं। नमाज असर पढ़ने के बाद आफताब जर्द होने तक नफिल पढ़ना यह मना है। नंबर 4, सूरज डूबने से लेकर मगरिब के फर्ज पढ़ने तक भी नफिल पढ़ना यह मना है। नंबर 5, जिस वक्त इमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबा के लिए खड़ा हुआ उस वक्त से लेकर फर्ज जुमा खत्म होने तक नफिल पढ़ना यह भी मना है। नंबर 6, ऐन खुतबा के वक्त अगरचे पहला हो या दूसरा हो, खुतबा जुमा का हो या ईदैन का हो, कुसूफ का हो या नमाज इस्तिस्का का हो, हज का हो या निकाह का हो, हर नमाज हत्ता के कजा भी इस मौके पर जायज नहीं, मगर साहिब तरतीब के लिए कि जुम्मा के खुतबा के वक्त कजा की इसे इजाजत शरीयत मुतहरा ने अता की है। मजीद यहां पर एक मसला यह भी याद रखिए कि जुम्मा की सुन्नतें अगर खुतबा से पहले शुरू कर दी थी कि इमाम खुतबे के लिए अपनी जगह से उठा, तो फरमाया इस सूरत के अंदर वो चार सुन्नतें जो पहले शुरू कर दी थी और खुतबा बाद में शुरू हुआ तो उन्हें पूरा कर लिया जाए। और सातवीं बात, ईदैन की नमाज से पहले नफिल पढ़ना ये मकरूह है, चाहे घर में पढ़े या ईदगाह में या मस्जिद में जाकर पढ़े, बाहर सूरत नफिल पढ़ना ये ईदैन की नमाज से पहले मकरूह है। ईदैन की नमाज के बाद नफिल मकरूह है जबकि ईदगाह में या मस्जिद में पढ़े जाएं। हां, अगर कोई शख्स घर में आकर पढ़ता है तो तब ये मकरूह ममनू नहीं है। नंबर 9, अरफात में जो जोहर और असर मिलाकर अपनी शरायत के साथ पढ़ी जाती हैं, इनके बीच में यानी इनके दरमियान में और बाद में भी नफिल और सुन्नत ये मकरूह है। मुज़दलिफा में जो मगरिब और इशा दोनों नमाजों को जमा किया जाता है, फकत इनके बीच में नफिल और सुन्नत पढ़ना ये मकरूह है। हां, इन दोनों नमाजों के बाद में अगर नफिल पढ़ना चाहे तो ये मकरूह नहीं है। नंबर 11, फर्ज का वक्त अगर तंग हो तो हर नमाज यहां तक के सुन्नत फजर और सुन्नत जोहर पढ़ना भी मकरूह है, क्योंकि वक्त ही इतना बाकी है कि इसमें फर्ज अदा हो सकते हैं, तो इसलिए फिर फर्ज को ही तरजीह दी जाएगी, सुन्नतें भी यहां पर छोड़ दी जाएगी अगरचे वो सुन्नतें मौकदा ही क्यों ना हो। नंबर 12, जिस बात से दिल बटे और इसको दूर कर सकता हो, यानी इंसान की तवज्जो जायल होती है और खुशू खुजू नहीं मिलता, बार बार उसी की तरफ तवज्जो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर पेशाब तेज है या री का गलबा है, तो ऐसी हालत के अंदर नमाज पढ़ना यह भी मकरूह है। अलबत्ता अगर वक्त जाता हो तो फिर पढ़ ले और ऐसी नमाज फिर से दोहराए। यूं ही खाना अगर सामने आ गया और उसकी ख्वाहिश भी बहुत ज्यादा है या कोई और ऐसी बात हो जिससे दिल को इत्मीनान ना होता हो और खुशू में फर्क आता हो, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना उलमा ने लिखा ये मकरूह है। फिर इन चीजों को पहले दूर किया जाए, दूर करने के बाद जब इत्मीनान हासिल हो जाए तो तब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिरी दे और नमाज अदा करें। मजलिस चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में एक रिकॉर्डेड सवाल भी शामिल करते हैं।
मुफ्ती साहब, मेरा नाम अबू बकर है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या हम इशा की नमाज पढ़ने से पहले वितर की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते?
वितर और इशा की नमाजें ये दोनों अलग अलग नमाजें हैं। इन दोनों का अगरचे के वक्त एक ही है, लेकिन इन दोनों को अदा करने में जो तरतीब है वो फर्ज है, यानी पहले नमाज इशा के फर्ज अदा किए जाएं, फिर उसके बाद वितर को अदा किया जाए। लिहाजा अगर किसी ने जानबूझकर वितर पहले पढ़ लिए और नमाज इशा के जो फर्ज हैं वो बाद में पढ़े, तो फिर इसकी नमाज अदा नहीं होगी, बल्कि ऐसे बंदे के ऊपर लाजिम है कि इशा की नमाज के बाद वो जो पहले वितर पढ़े थे उनको दोबारा पढ़े। अब यहां पर एक मसला और भी अर्ज कर देता हूं। हां, अगर कोई शख्स भूलकर वितर पहले अदा कर लेता है या इशा और वितर दोनों ही नमाजें इसने अदा की, बाद में इसको पता चला कि वितर तो सही अदा हो गए लेकिन फर्ज में कोई ऐसी कमी रह गई कि जिसकी बिना पर फर्ज नमाज फासिद हो गई है, तो इस सूरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ इशा की नमाज अदा कर ले, वितर अब दोबारा इसको अदा करना लाजिम नहीं है। अगरचे के इन दोनों नमाजों में तरतीब फर्ज तो है, लेकिन इस तरह के आजार की बिना पर शरीयत मुतहरा ने यह कहा कि तरतीब फिर साकित हो जाती है, वितर जो पहले पढ़ लिए थे वो अदा हो गए, अब जो फर्ज फासिद हो गए थे उनको अब ये बाद में पढ़ सकता है। ऐसी सूरत के अंदर वितर दोबारा पढ़ना इसके ऊपर लाजिम नहीं होगा। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आज के इस सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम।
हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज।